بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اس وقت میں اس بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی کے جو مسائل ہیں وہ کیسے حل کیے جائیں اور کیسے ہم کو اچھی زندگی حاصل ہو۔ چند دن پہلے دلی میں میں اپنے دفتر میں تھا، ایک صاحب آئے اور انڈیا میں جو ہندو مسلم جھگڑے ہیں اور یہاں سب معاملہ بگڑ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا کیا جائے کہ یہاں پر دونوں مل کر اچھے طریقے سے رہیں، جھگڑا ختم ہو۔ تو میں نے کہا کہ اس کا جواب بہت ہی سادہ ہے، وہ یہ کہ یہی ہندو اور مسلمان باہر کے دیشوں میں جا کر جس طرح رہتے ہیں ویسے ہی انڈیا میں رہنے لگے۔ میں نے عرب میں دیکھا، عرب ملکوں میں اور یورپ امریکہ میں دیکھا ہے، یہی ہندو اور یہی مسلمان جب یورپ امریکہ میں جاتے ہیں یا عرب دیشوں میں جاتے ہیں تو دونوں وہاں پر خوب ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، وہاں بھی اسی طرح سے بہت سی باتیں ہیں گڑبڑ قسم کی، مگر کوئی بھی اس سے جھگڑتا نہیں، کوئی ٹکراتا نہیں، سب ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں۔ جیسے کہ میں جانتا ہوں کہ باہر کے دیشوں میں انڈیا کے لوگوں کو، چاہے مسلمان ہو یا ہندو ہوں، کئی باتوں میں ڈسکرمنیشن کا تجربہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک شخص انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے تو اس کو جتنی سیلری ملے گی مہینے کی، اس کی چوگنا ان لوگوں کو ملتی ہے جو امریکہ سے آتے ہیں یا جرمنی سے یا یو کے سے آتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا امتیاز ہے، ڈسکرمنیشن ہے، کہ ہم کو ملتا ہے جتنا اس کا چوگنا ملتا ہے دوسرے کو۔ اور بھی کئی باتوں میں فرق ہوتا ہے، تعلیم میں، میڈیکل سہولت میں، ہر چیز میں، مگر کوئی بھی وہاں اس کے خلاف چیخ پکار نہیں کرتا، خوب ٹھیک ٹھاک کے ایڈجسٹ کر کے سب لوگ رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابھی ایک صاحب مجھ سے ملے دلی میں، تو وہ پہلے بہت ووکل تھے، یعنی انڈیا کے بارے میں بہت شکایتیں کرتے تھے۔ اب وہ ایک عرب دیش میں رہتے ہیں، وہاں خوب ہی ٹھیک ٹھاک وہ رہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو یہاں بہت بولتے تھے اور وہاں آپ خوب ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، وہاں کوئی بولتے نہیں آپ، تو ایسا کیوں؟ تو چونکہ وہاں پر میں تھا اور وہ تھے، کوئی تیسرا سننے والا نہیں تھا، تو ہنس کر انہوں نے کہا کہ دیکھیے، سیدھی بات یہ ہے کہ یہاں ملتا تھا ہم کو 6,000 روپے مہینہ، وہاں ملتا ہے 60,000 روپے مہینہ۔ تو دیکھیے، ہندو ہو یا مسلمان ہو، پیسے کی خاطر دوسرے دیشوں میں جا کر خوب چپ رہتا ہے، خوب ایڈجسٹ کر کے رہتا ہے، کوئی جھگڑا فساد نہیں کرتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو کچھ وہاں آپ کرتے ہیں پیسے کے لیے، وہی اپنے دیش میں کیجئے پرنسپل کے لیے، اصول کے لیے۔ یعنی اس کو آپ زندگی کا ایک اصول سمجھیے کہ جہاں بھی آپ رہیں گے، چاہے اپنے دیش میں ہوں یا باہر کے دیش میں ہوں، تو کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو آپ کے مزاج کے خلاف ہوں، جو آپ کو اچھی نہ لگیں، تو اس کو برداشت کر لیجئے۔ اس لیے کہ برداشت بھی زندگی کا ایک اصول ہے۔ دیکھیے، ایک صاحب سے میں نے کہا کہ ہم دنیا میں کیسے رہیں، اس کو نیچر نے بہت اچھے طریقے سے دکھایا ہے، پھول کے پیڑ کی شکل میں۔ آپ گلاب کا ایک پھول لیجئے، गुलाब का एक पेड़ लीजिए तो आप देखेंगे कि उसमें उसी एक पेड़ में कांटे भी हैं, उसी ही पेड़ में खूबसूरत फूल भी है। तो आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि कांटे को अवॉइड करते हुए फूल को ले लेते हैं। आप उसके खिलाफ चीखते नहीं, चिल्लाते नहीं, प्रोटेस्ट नहीं करते कि इसके पेड़ में कांटे क्यों लगे हुए हैं। कांटे को भुलाकर, उसको इग्नोर करके या उसको अवॉइड करके आपका सारा ध्यान चला जाता है फूल पर और फूल को ले लेते हैं आप। तो ये गोया नेचर ने हमें दिखाया कि इंसानी समाज या इंसानी सोसाइटी भी इसी तरह रहेगी, यहाँ फूल भी होंगे और कांटे भी होंगे। ये खुद नेचर का अपना प्लान है, नेचर की अपनी स्कीम है। और जब खुद नेचर की अपनी स्कीम हो तो उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। इस दुनिया में देखिए, हर मामले में हमने जो भी कोई कामयाबी हासिल की है तो नेचर को मानकर, न कि नेचर को लड़कर। जैसे बरसात में पानी बरसता है तो आप जानते हैं कि कीचड़ होती है, अगर आप मैदान में हों तो आप भीग जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे। तो क्या आप चिल्लाते हैं कि बारिश क्यों होती है? नहीं, आप छत बनाते हैं, आप घर बनाते हैं, तो बारिश से भीगने से बचते हैं। आप सड़क बनाते हैं, सड़क पर अपनी गाड़ी दौड़ाते हैं। तो इस तरह से आप बारिश से जो मसले पैदा हुए हैं उन मसलों से अपने को बचाकर बारिश का फ़ायदा ले लेते हैं आप। इस तरह आप देखिए, सूरज है, सूरज जब निकलता है तो हमको गर्मी भी देता है। मई जून की गर्मी देखिए कितनी कड़ी होती है। तो क्या करते हैं आप, क्या सूरज के खिलाफ चिल्लाते हैं? नहीं, वहाँ भी आप अपने लिए साया बनाते हैं। कोई और साया नहीं है तो आप पेड़ के नीचे चले जाएंगे, घर बनाएंगे, या आपके पास ताकत है तो आप अपने घर में पंखा लगाएंगे, एसी लगाएंगे। गर्जे के सूरज की धूप और सूरज की गर्मी के खिलाफ आप जानते हैं कि चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हमें उससे मुआफ़त करना है। तो पूरे नेचर का निज़ाम इसी तरह से चल रहा है। यही निज़ाम जो नेचर में है, यही इंसानी समाज में भी है। इंसानी समाज में अल्लाह ताला ने हर किस्म के लोग पैदा किए हैं। जब हर किस्म के लोग हैं तो जगह जगह क्लैश भी होगा, जगह जगह टकराव भी होगा, और वहाँ पर आपको वही करना है जो दुनिया के दूसरे मामले में आप करते हैं, कि जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती उनसे अवॉइड करके अच्छी वाली बातों को ले लेते हैं। दूसरी बात मैं इसमें यह कहना चाहूँगा कि ये जो निज़ाम है कि हमें अच्छी बातों के साथ साथ बुरी बातें भी दुनिया में हमें भुगतनी पड़ती हैं, हमारे लिए कोई दोस्त है तो कोई दुश्मन भी है, कोई हमें मीठा बोल बोलने वाला है तो कोई कड़वा बोलने वाली भी हमारे लिए मौजूद है। ये सब है, कोई मुश्तहिल करने वाला भी है, कोई मीठे तरीके से भी सलूक करने वाला है। ये सब जो है ये कोई बुराई की बात नहीं है। इस पर गौर कीजिए तो आप मानेंगे इस चीज़ को कि इसमें खुद भी एक बहुत बड़ी भलाई है। वो क्या है, ये चैलेंजेस हैं। अगर इंसानी ज़िंदगी में चैलेंजेस ना हो तो तरक्की भी ना हो। इंसान के बारे में जो स्टडी की गई है वो ये है कि इंसान के अंदर बेपनाह पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा ताकत उसके अंदर है। मसलन इंसान का दिमाग, दिमाग को लीजिए, दिमाग की मिसाल को लीजिए, इंसानी दिमाग या इंसानी ब्रेन जो है, इंसानी ब्रेन के बारे में एक साइंटिस्ट ने लिखा है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज़्यादा पेचीदा मशीन है इंसान का ब्रेन। तो उसने लिखा है कि अगर एक बहुत ही बड़ा सुपर कंप्यूटर बनाया जाए, जैसा कंप्यूटर अभी तक दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है, एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका सामान 7 स्टोरी की बिल्डिंग में फैला हुआ हो। एक बिल्डिंग जिसकी 7 स्टोरीज हों, इतनी बड़ी इतनी ऊंची बिल्डिंग में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका सामान फैला हुआ हो, इतना बड़ा कंप्यूटर बनाया जाए, तो ऐसा कंप्यूटर इंसानी ब्रेन का सिर्फ एक रफ स्केच होगा। तो इससे समझ सकते हैं आप कि इंसान के अंदर कितना पोटेंशियल है। लेकिन यहाँ पर मामला क्या है, ये पोटेंशियल डॉर्मेंट पोजीशन में होता है, सोया हुआ होता है। इंसान के ब्रेन में, एक साइंटिस्ट ने लिखा है कि इतने ज़्यादा पार्टिकल्स हैं कि सारे यूनिवर्स में जितने पार्टिकल हैं उतने एक इंडिविजुअल ब्रेन में होते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। मगर स्टडी ये भी बताती है कि ये इंसानी ब्रेन की ये सेल्स हैं, ये आम तौर पर आम हालात में, स्मूथ हालात में एक्टिव नहीं होते। इनको जो चीज़ एक्टिव करती है वो शॉक है, वो झटके हैं, वो मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं। तो कुदरत ने, जिसने कि हमारे ब्रेन को बनाया, इंसान का जो दिमाग है इस पर बहुत ज़्यादा स्टडी की गई है और सारी बातें यहाँ दोहराने का मौका नहीं है। मैं जिस पहलू को इस वक्त रखना चाहता हूँ वो ये है कि इंसान के दिमाग में अगरचे पोटेंशियल अनलिमिटेड है, यानी ये कहा जाता है कि दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े साइंटिस्ट ने, किसी भी बड़े से बड़े फिलासफर ने अपने दिमाग के 10% को भी इस्तेमाल नहीं किया है। इस माने कि जो इंसान पैदा हुई अब तक, जितने भी इंसान, सब इस हाल में दुनिया से चले गए कि उनके दिमाग का 90% इस्तेमाल ही नहीं हो सका। तो इसका माने है कि सबसे बड़ा ख़जाना जो हमारे पास है वो हमारा ब्रेन है। जो बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये इतना बड़ा ख़जाना जो ब्रेन का है, वो इस तरह बनाया गया है कि जब तक उसको झटके न लगें, जब तक उसको चैलेंज पेश ना आए, जब तक मसाइल में न घिरे आदमी, उस वक्त तक इंसानी ब्रेन के सेल्स एक्टिव नहीं होते। इसके माने यह है कि जिस चीज़ को आप जुल्म कह रहे हैं, जिसको आप मसाइल कह रहे हैं, वो हकीकतन आपके लिए नेमत है। क्योंकि अगर ये मसाइल न पेश आए, अगर ये चैलेंजेस न पेश आए, तो इसका मतलब ये है कि आपके ब्रेन सेल्स जो हैं वो एक्टिव ही नहीं होंगे। एक्टिव न होंगे तो फिर इसके माने कि आप में और एक जानवर में कुछ फ़र्क नहीं होगा। तो खुदा ये चाहता है कि आपके ब्रेन के पोटेंशियल को जगाए, इसलिए उसने दुनिया में चैलेंजेस रखे हैं। तो इससे आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसे तो वेलकम करने की ज़रूरत है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ ये जाविये निगाह की या एंगल ऑफ विज़न की बात है, आउटलुक की बात है, कि एक सूरत हाल जिसको आप प्रॉब्लम के रूप में देख रहे हैं, जिसको आप जुल्म के रूप में देख रहे हैं, जिसको आप तासुब के रूप में देख रहे हैं, उसको आप चैलेंज के रूप में देखने लगे। बस इतनी सी बात है, क्योंकि जब चैलेंज के रूप में देखेंगे तो एकदम बात कुछ से कुछ हो जाएगी। जब एक बात को आप यूं कहते हैं कि ये जुल्म है, तो आपको जो कुछ करने को मिलता है वो क्या, फरियाद करना। किसी सूरत हाल को जो आप जुल्म कहते हैं, तो आपके समझ में इसके सिवा कुछ नहीं आता कि उसके खिलाफ फरियाद करें, प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें। तो जुल्म के जवाब में सिर्फ प्रोटेस्ट का जहन पैदा होता है बस। लेकिन जब आप कहते हैं कि ये चैलेंज है, तो फिर उस वक्त क्या होता है, आपके जहन में मुकाबले का मिजाज आता है कि ये चैलेंज है, मुझे इसका मुकाबला करना है। तो एक ही वाकया एक शक्ल में आपके लिए मौत का पैगाम है, वही वाकया दूसरी शक्ल में आपके लिए ज़िंदगी का जीना बन जाता है। यह है बुनियादी चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि हर आदमी सोचे और हर आदमी इसको महसूस करे। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये बात थी कि अक्सर लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि साहब यहाँ तो तस्सुब है, यहाँ तो जुल्म है। ये बहुत ही छोटी सोच है। एक मुसलमान जो जिनके रिश्तेदार वगैरह अमेरिका में थे, वहाँ उनकी तालीम हुई और उन्हें वहाँ एक जॉब भी मिल गया, लेकिन फिर कुछ उनको सोच आई कि मैं अपने वतन में जाऊँ, इंडिया आऊँ, तो जॉब को छोड़कर वो अमेरिका से इंडिया आ गए। यहाँ क्या हुआ, जिससे भी वो मुलाकात करते वो एक ही बात उनसे कहता कि तुम बड़े बेवकूफ़ हो, तुम इंडिया में चले आए, यहाँ तो कोई स्कोप नहीं। हर आदमी एक ही बात कह रहा है कि यहाँ तो कोई स्कोप नहीं, यहाँ तो कोई स्कोप नहीं। तो मेरे पास आए वो, मुझसे कहा कि साहब यहाँ मैं आ गया और यहाँ जिससे मिलता हूँ वो कहता है कि तुम अमेरिका को छोड़ के इंडिया में आ गए, यहाँ तो कोई स्कोप नहीं तुम्हारे लिए। तो अचानक मेरी ज़ुबान से निकला कि स्कोप नहीं है इसलिए तो सबसे बड़ा स्कोप है, स्कोप न होना सबसे बड़ा स्कोप है। उनका वो कैसे, मन का स्कोप ना होने के माने कि यहाँ चैलेंजेस हैं, यहाँ चैलेंजेस हैं, वही आप ज़्यादा तरक्की करेंगे। अमेरिका में अगर आप बिलफर्ज कोई बड़ी तनख्वाह मिल भी जाती आपको तो आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट रुक जाता, आपके ब्रेन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा जाहिर नहीं हो सकते थे, आप किसी बड़ी तरक्की तक नहीं पहुँच सकते थे क्योंकि चैलेंजेस नहीं थे। मिसाल के तौर पर जो पहले ज़माने में नवाब हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, तो उनको देखिए वो बिल्कुल बेवकूफ़ के बेवकूफ़ रहते थे। किसी नवाब या राजा ने कोई बड़ी किताब नहीं लिखी, कोई बड़ी रिसर्च नहीं किसी नवाब राजा ने की, क्यों, उनके ब्रेन जो थे वो सोए हुए रह गए, क्योंकि उन्हें चैलेंजेस नहीं थे ज़िंदगी के, इस वजह से उनके दिमाग ने कोई बड़ा काम भी नहीं किया। तो मैंने उनसे कहा कि यहाँ स्कोप न होना ये आपके लिए खुद एक बड़ा बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि वो चैलेंज है, उस चैलेंज से आपकी पर्सनालिटी डेवलप करेगी, आपके ब्रेन सेल्स ज़्यादा एक्टिव होंगे। तो इंडिया में जो मसला है उस मसले को लोग जुल्म के रूप में देखते हैं, मैं उस मसले को चैलेंज के रूप में देखता हूँ। इसीलिए मैं समझता हूँ कि इंडिया में हमारे लिए उससे भी ज़्यादा स्कोप है जितना किसी और जगह हो सकता है। अब मैं दो बात कहूँगा, एक शख्स अगर सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, तो मैं उससे कहूँगा कि बाहर के देश में जाकर जो तुम जितना पैसा कमाते हो उतना ही पैसा तुम इंडिया में भी कमा सकते हो, मेरे नज़दीक कोई फ़र्क नहीं। खुद मेरे सगे भाई ने इंडिया में इतना ही पैसा कमाया इतना कोई बाहर के देश में जाकर कमाता है, मेरे सगे भाई ने, जिनका यहीं बॉम्बे में भी जल्दी इंतकाल हो गया। तो कैसे बाहर के देश में जाकर कैसे कमाते हैं लोग, उसका एक ही राज है, वहाँ के सिस्टम से एडजस्ट करके। वहाँ भी बहुत सी नाखुशगवारी की बातें होती हैं, बहुत सी उल्टी बातें होती हैं, हर जगह, कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ कुछ ना कुछ उल्टी बातें न हो रही हों हमारे खिलाफ, लेकिन वहाँ पर क्या करते हैं आप, वहाँ पर एडजस्ट करके रहते हैं, माफ़कत करके रहते हैं, हमाहंगी करके रहते हैं। वहाँ आपकी नज़र मसाइल के बजाय स्कोप पर जाती है, और स्कोप पर जाती है तो आप स्कोप को अवेल करते हैं। अच्छा, यहाँ क्या होता है, यहाँ का मिजाज ऐसा बिगड़ गया है कि यहाँ पर हमाहंगी के मिजाज नहीं, एडजस्ट करने के मिजाज नहीं, हालात से माफ़कत करने के मिजाज नहीं। यही वजह है कि इंडिया में आप ज़्यादा कमाई नहीं कर पाते, इंडिया में ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते। तो अगर आपको सिर्फ कमाना ही कमाना है तो उसका राज है एडजस्टमेंट, आप एडजस्ट कीजिए हालात से, और यहाँ भी आप उतना ही कमाई करेंगे जितना कि आप बाहर जाकर कमाते हैं, वहाँ एडजस्ट करते हैं, यहाँ एडजस्ट नहीं करते। मैं अमेरिका गया तो वहाँ पर एक हिंदुस्तानी से मुलाकात हुई, एक इंडियन से, तो मैंने उनसे कहा कि आप हिंदुस्तान छोड़कर अमेरिका आ गए, यहाँ आप सिटीज़न बन गए, तो ऐसा क्यों किया आपने। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पीस है, इंडिया में पीस नहीं है। मैंने कहा कि आपने आधी बात कही, ये पूरी बात नहीं है। पीस की एक कीमत है, वो कीमत आप इंडिया में नहीं दिया तो वहाँ पीस नहीं मिला आपको, और यहाँ दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको वो मिल रहा है। तो उन्होंने कहा क्या कीमत, मैंने कहा कि पीस की कीमत है एडजस्टमेंट, हालात से एडजस्टमेंट। वहाँ बताया मैंने उनको बहुत सी मिसालें कि देखिए ये बातें हैं, यही बात आप इंडिया में बर्दाश्त नहीं करते और अमेरिका में आप बर्दाश्त कर रहे हैं, तो यही कीमत देना है। यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करते तो यहाँ पर राइट होता है, यहाँ पर फसाद होता है, कमल झगड़े होते हैं। वहाँ पर आप उसी तरह की चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं तो वहाँ पर राइट भी नहीं होता, वहाँ पर झगड़े भी नहीं होते, वहाँ कमल किस्म के किस्से नहीं होते। तो ये वो लोग हैं जिनको पैसा कमाना चाहते हों तो उनको मैं कहूँगा कि आप यहीं पर एडजस्ट करके रहिए, यहीं पर आप पैसा कमा सकते हैं। दूसरी चीज़ वो है जो मैंने पहले अर्ज की कि तरक्की, इंसानी तरक्की। इंसानी तरक्की के लिए तो मैं कहूँगा कि इंडिया से बेहतर कोई जगह नहीं, क्योंकि जितने चैलेंजेस यहाँ हैं हमारे लिए उतने चैलेंज दूसरी जगह है नहीं। तो ये चैलेंजेस के दरमियान जो ज़िंदगी गुजारेंगे आप यहाँ, उसमें आपके जो ज़हनी तरक्की होगी, जो इल्मी तरक्की होगी, आपके पर्सनालिटी का डेवलपमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना कहीं और नहीं हो सकता जहाँ के हालात बिल्कुल स्मूथ किस्म के हों। तो खुलासा ये है कि सारा मामला सोच का है। मैं अभी यही बॉम्बे में एक साहब यहीं रहते हैं, वो बाहर से किसी और स्टेट के हैं, वो तो बॉम्बे में रहते हैं, तो मुझसे एक मुलाकात हुई तो अपनी नई मारुति कार पर बैठा करके मुझको वो ले चले, कहीं जाना था जहाँ पहुँचने में तकरीबन एक घंटा लगता था, ज़्यादा दूर जाना था। तो मैं उनके पास, वो कार चला रहे थे और पास की सीट पर मैं बैठा हुआ था, तो आध घंटे तक तकरीबन वो यही बताते रहे कि यहाँ बॉम्बे में बड़ा जुल्म है, बड़ा तअस्सुब है, बहुत कमंडल यहाँ वगैरह वगैरह, ये सब बातें हैं। आध घंटे तक मैं ये बातें उनकी सुनता रहा। आखिर में मैंने उनके ज़ाती हालात पूछना शुरू किए तो पता ये चला कि वो बॉम्बे में आए तो यहाँ पर 150 रुपये पगार पर वो मुलाजमत की उन्होंने, 150 रुपये कुछ पहले। फिर यहीं बॉम्बे में तरक्की करते करते आज उनके पास एक शोरूम है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक का सामान वो में डील करते हैं, वो उनके पास ज़ाती मकान है, और अभी जल्द ही उन्होंने नई मारुति कार ख़रीदी है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे भाई, आप अपने को एक्सक्लूड करके क्यों सोचते हैं, अपने को इंक्लूड करके सोचिए। यानी आपको ये कहना चाहिए कि मैंने कहा कि सारा मामला सोच का मामला है। चूंकि आप जुल्म की इस्तलाह में सोच रहे हैं तो आपके पास कहने के लिए क्या है, देखो हर तरफ जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है। अगर आपकी सोच सही हो जाए तो आप क्या कहने के लिए बात होगी आपके पास, फिर आपके पास ये कहने के लिए होगा कि भाइयों देखो, अगरचे जुल्म है, अगरचे तअस्सुब है, फिर भी इसी के दरमियान मैंने इतनी बड़ी तरक्की कर ली है, तो तुम भी इसी तरह तरक्की कर सकते हो। तो मसला जुल्म या तअस्सुब का होना नहीं है, बल्कि गलत सोच की वजह से मसाइल की तरफ ध्यान चला जाना है। सही बात यह है कि अगर सही सोच हो तो हमारा ध्यान स्कोप पर, मौके पर रहेगा, और हम मौके को अवेल करने की कोशिश करेंगे, और ज़िंदगी में यही, ज़िंदगी में वही शख्स कामयाब होता है जो मसाइल को नज़रअंदाज करे और स्कोप को अवेल करे। जो लोग स्कोप को अवेल करें वो लाजमन ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, उनकी कामयाबी को कोई शख्स रोक नहीं सकता।